वला तुजादिन अनिल्लज़ीना यख्तानून अनफुसहुम, और देखिए आप इनकी तरफ से मत झगड़ा करें जो खुद अपनी ही खयानत करते हैं। किसको कहा जा रहा है? नबी को। खयानत से यहाँ क्या मुराद है? दो गुना है। मासियत मुराद है। दो मासियतें हैं। जिस शख्स ने चोरी की थी उसके सेंस में देखें तो खयानत से मुराद चोरी है, क्योंकि उसने चोरी की, और उसके कबीले और खानदान के लोगों के टैक्स से देखेंगे तो यहाँ तक तख्तानून अनफुसहुम से मुराद बेजा हिमायत है, साइड लेना जिसको कहते हैं, फेवरेटिज्म कहते हैं, कि देखो तुम किसी को गलत काम करता देख के भी ये कहते हो कि वो अच्छा करता है तो गोया कि तुम खयानत कर रहे हो, ये दुरुस्त नहीं है। वो शख्स अल्लाह की नज़र में फासिक और मुजरिम था, और उसके बारे में देखिए कि अल्लाह के नबी को कितना समझाया जा रहा है, सरजिंस की जा रही है कि देखें आप ऐसे शख्स का साथ ना लें। तो आज ज़रा सोचिए कि दुनिया में बड़े बड़े जुल्म और गुनाह और मासीयत करते हुए लोगों को हम देख के अच्छा कहें या उनका साथ दें या उनके मिशन में शामिल हो जाएं, तो उस वक्त अल्लाह ताला की निगाह में हमारी क्या औकात रहती होगी? क्या पता चला कि गलत काम ना खुद करना है और ना किसी के गलत काम पर साथ देना है। एक हदीस का खुलासा है कि मशरिक में रहने वाले अगर गुनाह करें तो मगरिब वाले अगर उस पर राजी हैं तो वो सब उनके गुनाह में बराबर के शरीक हैं, और इसका ऑपोजिट भी। आप ईस्ट में रहते हैं, मिसाल देने के मुराद के ज़रूरी नहीं कि आप उस गुनाह के अंदर इन्वॉल्व हैं, दिल से अगर आप किसी के गुनाह को बुरा नहीं कहते ना तो आप उसके गुनाह में बराबर हैं। कैसे? आपके पास लिमिट्स नहीं है, आपके पास मीन्स ही नहीं है, आप वो गुनाह नहीं कर पा रहे। कोई बहुत दौलतमंद बहुत पौश घराने का शख्स वही गुनाह कर रहा है और आप इसको बिल्कुल बुरा नहीं समझते, और बल्कि सोचते हैं कि अगर कल मेरे पास पैसा होगा तो ज़रा मैं भी कभी कभी चले जाऊंगा कसीनो में, तो कहा कि आप घर बैठे गुनाहगार हैं, क्योंकि चांस दिया जाता तो तुमने वही करना था। और याद रखिए हमारी तकदीरें अल्लाह के पास लिखी हुई हैं। अल्लाह ताला अगर हमारे नामे अमाल मुरतब करवाने की बजाय सिर्फ अपने लिखे पे कल हमें जन्नत या जहन्नुम में भेज दे तो 100% उसको हक है, 19-20 का भी फ़र्क नहीं होगा, लेकिन वो हुज्जत कायम करने के लिए हमें दुनिया में काम करने का मौका दे देता है। इसलिए एक इंसान जब भी ये काम करे सोच के करे कि कल क़यामत के दिन क्या हाल होगा, कि जिस दिन अल्लाह ताला ने हर इंसान से उसकी हिसाब लेना है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना खव्वाना नसीमा, यकीनन गुनाहगार दगाबाज अल्लाह ताला को अच्छा नहीं लगता। तो हम कहते हैं नहीं लगता तो ना लगे, हम क्या करें फिर? अल्लाह को नहीं लगता ना लगे, हमें तो अच्छे लगते हैं गुनाहगार। कितने गुनाहगार अच्छे लगते हैं? हाउस हैंडसम, ओ ऑसम, ओ माशाल्लाह, आई एम गोइंग टू डाई फॉर हिम, ये क्या कुछ जुमले हैं। कभी आप देखा करें जब हीरोज़ के लिए लड़कियों की रालें टपक रही होती हैं और जब उनकी तारीफें करती हैं ऐसा लगता है वाकई मर जाएंगी। आई एम डाइंग फॉर हिम, मैं मर रही हूँ इसके लिए, सो कुट। और ये और कद आवर उनके पोस्टर लगे हुए हैं और उनको देख देख के हौके भरने वाली, ये क्या होगा? अल्लाह ताला तो हमें छोटी छोटी बातों पर बताता है, और ये बातें तो माएँ भी नहीं बता सकती जो कुरान बताता है। यकीन करें इस्लाम ने तो इस तरह से तज़किया किया कि अगर हमने अपने बच्चों की तरबियत का पहले दिन से वो इंतज़ाम किया होता जो उनका हक था, तो यकीन करें आज उनके कद की तरह उनके मसले ना बढ़ चुके होते। जो माँ बाप बचपन से बच्चों को दीन की रहनुमाई दे देते हैं, आप देखिए कि 8 साल की आयशा नबी की बीवी बनने के लिए तैयार हो गई थी तो आई ना। आप ज़रा सोचिए कि आज के दौर में 8 साल की बच्ची किस काबिल है? गुड़िया से खेले या उछला कूदी करेगी ना। जिन घरानों में, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बीसियों मिसालें मौजूद हैं कि जिन घरानों में बचपन से बच्चों को मुहज्जब कर दिया जाता है वो बच्चे बहुत ही ज़्यादा बड़े होने से पहले ही बड़े होते हैं। इस जुमे को एक छोटा सा एक्सपीरियंस हुआ। अब वो एक्सपीरियंस क्या था, बच्चियाँ थी दो बड़ी खूबसूरत मस्जिद में, सर पे उन्होंने खिमार और नीचे अबाय पहने हुए थे। जुमे के लिए मैं गई तो वहाँ मैंने देखी, मुझे तो लगी ट्विंस है, लेकिन 1 साल का फ़र्क था। राउंड फेसेस और जितनी खूबसूरती उनके अंदर हो सकती थी वो थी, और सबसे प्यारी वो इसलिए लग रही थी कि वो खिमार पहन के और नीचे अबाय में थी। नमाज शुरू हुई तो सफ़ ख़त्म होती है ना तो मस्जिद में आपको पता ही होगा कि टेढ़ी बनाए तो आखिर में थोड़ी जगह छूट जाती है किबला की रफ़ करने में, तो वहाँ बड़ा बंदा तो नहीं आ सकता था, छोटा आ सकता था, तो वो बच्ची पीछे थी। तो मैंने उसे कहा कम हेयर, यकीन करें मेरे कहने पे इस तरह वो उछलती हुई फुदकती हुई आ गई, उसने कोई रेजिस्टेंस नहीं किया। तो मेरे से अगली जो सफ़ थी ना उसके आखिर में मैंने उस बच्ची को खड़ा कर दिया कि ये फिट हो जाएगी इधर। वही तो मेरे वाली साथ वाली में भी जगह थी तो मैंने दूसरे से कहा तुम इधर आ जाओ, वो भी आ गई। अब मुझे और प्यारी लगी। जब नमाज के लिए खड़ी तो वो पीछे से अपने स्काफ में, हिजाब में इतनी सीधी मुझे अच्छी लगे, बिल्कुल उतनी कूल काम उसने नमाज पढ़ी जितनी के दूसरी पढ़ी थी। वो हिल नहीं रही थी यूं, या उछला कूदी कुछ नहीं थी। नमाज पढ़ के उसके बाद जब बैठे हम दुआ, तो उन्होंने बैठ के पढ़ना भी शुरू कर दिया। तो पीछे उसने देखा ना, तो मैंने उसको ऐसे किया, मुझे वो इतनी प्यारी लग रही, तो मैंने उसको दिया। यकीन करे विद आउट एनी इरिटेशन या रेजिस्टेंस या ऊँ हाँ, बच्चे करते ही है ना शर्मा, वो फौरन स्माइल देकर आके मेरे गले लग गई। जब वो मेरे गले लगी तो उसकी बहन जो इधर मेरी वाली सब में थी वो भी देख रही थी। तो मैंने उसको देखा ना, मैंने दूसरी बाजू इधर कर दी, तो वो दूसरी भी उछलती हुई आके ना, अब तो दोनों मेरे सीने से लगी हुई है। वो दोनों प्यार मैंने उनको किया, इतना प्यार किया उनको, तो फिर प्यार करके ना, तो मैंने छोड़ा ना, तो पीछे आके ना बिल्कुल कोने में ऐसे वो एक कर रही थी जैसे वो कोई, मेरा नहीं ख्याल 20 साल की बच्ची भी इतनी कूल एंड काम हो। वो वहां बैठ गई, मैं अपनी जगह से फारिग हुई। मेरा दिल करे मैं उनको कुछ दूँ, इतनी मुझे मीठी बच्चियां लग रही हैं। मेरे पास होता कोई नहीं है पर्स में कोई कैंडी शैंडी, तो खैर मैं उनके पास बैठी गई, तो मैंने उनसे कहा कि आई वॉन्ट टू गिव यू समथिंग ना, तो मैंने 2 पाउंड मेरे पर्स में निकले। मैंने कहा बेटा टेक दिस, मैंने कहा वेयर इज योर मॉम, कहती शी इज इन टॉयलेट। मैंने उन्हें कहा कि अच्छा ये पैसे जो हैं ये अपनी अम्मी को दो, और उन्हें कहना कि वो आपके लिए कैंडी खरीदे। अब देखिए सिर्फ 1 साल का फर्क था, लेकिन वो बड़ी बच्ची जाहिर है कि थोड़ी बड़ी, तो उसने ऐसे किया कि नहीं मुझे नहीं लेने, लेकिन वो छोटी जो थी ना वो अपनी जगह से उठी, तो उसने उछल के वो 2 पाउंड मेरे से ले लिए। अच्छा 2 पाउंड जब उसने ले लिए, मुझे आप सब याद आ रहे थे, क्योंकि मैं जब भी कोई अच्छी चीज़ देखूँ तो मेरा दिल होता है मैं आप सबसे शेयर करूँ। मेरे दिल में आया कि मैं अगर इन बच्चियों की एक तस्वीर ले लूँ तो किसी मौके पर दिखाऊँ कि ये ड्रेसअप बच्चियों का कितना प्यारा है। तो मैंने उन्हें कहा कि कैन यू टेक अ पिक्चर, मैं तुम्हारी पिक्चर ले लूँ। एकदम वही अंदर का बच्चा बिल्कुल सीधी हो गई, ले ले, कहती ओके। ऐसे साथ तो बैठी थी, लेकिन विद इन फ्यू सेकेंड, 10 सेकेंड में बड़ी कहती नो यू कैंट बिकॉज पिक्चर इज हराम, आपा जी ने मुझे मना कर दिया, अब मैं क्या करूँ। इतनी देर में उनकी माँ आ गई, बाथरूम से खड़ी थी। तो खैर मैं उसको मिली कि मैंने उसको बताया ये बच्चियाँ तुम्हारी थी, कहती डिड यू टेक देयर पिक्चर। तो मैंने कहा नो शी ऑलरेडी फॉरबिड मी, कि उसने मुझे मना कर दिया। मैंने उम्र भी नहीं पूछी, मेरा ख्याल है 7-8 साल या 6 साल, 7-8 की होंगी। ये इतना ठहराव क्यों था? उसको ये भी पता है बाया सर पे लेते हैं, उसको ये भी पता है कि किसी से चीज़ नहीं लेते, और कोई शोहो चंचलपन ही नहीं है। और फिर चले फतवा उन्होंने जो भी दिया पिक्चर का वो भी दे दिया। वो सफ़र जिस पे जाना है ना कल, देर क्यों करते हैं, जल्दी शुरू करते हैं, अपना भी और बच्चों का भी। हम कहते हैं पहले कर लो फिर ठीक हो जाएंगे, नेवर नेवर। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में वो कहते हैं गिरा बांध लिए कि जो फैसला आपने करवाना है ना किसी से, day 1 से शुरू कर दें, जिसको नहीं मानना वो पहले दिन छोड़ जाएगा। हम कहते नहीं शुरू में ऐसे करते हैं फिर ये करेंगे, कोई नहीं एक्सेप्ट करता इल्ला जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे। तो यहाँ ये बात हमें समझ आ रही है कि कभी भी किसी को पहले ख़राब करके बिगाड़ के फिर उसको ठीक करने का दावा करेंगे तो आप गलत करेंगे। आप हमेशा जिस काम को कल नहीं अपने बच्चों में और अपने आप में देखना चाहते उसको आज भी ना करवाएं, इसलिए कि अल्लाह को ये पसंद नहीं है। बचपन से बच्चों को ये चीज़ें सिखाएं आप, कि देखो ये अल्लाह को पसंद है ये अल्लाह को नहीं पसंद। आप ये जुमला आप हाईलाइट कर लें कि अल्लाह ताला को धोखा देने वाला और गुनाहगार पसंद नहीं। क्या बच्चे दिन में कई बार दूसरे बच्चों के साथ धोखे नहीं करते? तो आप कहते हैं बेटा देख लो, अल्लाह विल नॉट लव यू, आई विल नॉट लव यू। और इस तरीके से हल्की फुल्की तरबियत करें कि ना तो बच्चों के सर पे सवार हो जाए कि अच्छा फिर अल्लाह तो कभी खुशी नहीं होगा तो फिर हम नहीं होते, और ना उनको बिल्कुल अल्लाह से बेनियाज कर दें, छोटी छोटी चीज़ों में लेके आए। फिर आप देखिए कि एक दो चीज़ें और हैं, खवान और असीम का फ़र्क क्या है यहाँ। खवान खाइन से है ख़यानत करने वाला, और असीम आसिम से, दोनों मुबालगे के सीगे हैं, यानी ख़यानत करना और गुनाह करना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। हालांकि आप देखिए कि ख़यानत भी गुनाह है, लेकिन ख्यानत की शिद्दत को वाजे करने के लिए यहाँ खवान का लफ्ज अलग भी लिख दिया। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि जिसने किसी के साथ सिर्फ एक लफ्ज कहकर उसकी मदद कर दी गलत चीज में, वो बराबर का शरीक हो गया उस काम में। तो लिहाजा ऐसे लोग फिर क्या करें और कैसे करें कि वो अल्लाह ताला से इस्तग़फार करें। अब यहां देखिए उलमाए कराम की गहराइयां, वो कहते हैं कि बात तो एक ने की थी ना, ठीक है, लेकिन यहाँ जमा का सीगा क्यों आ गया? खवान और असीम देखिए ना, दो लफ्ज़ हैं, मुबालके के सीगे हैं, ज्यादती के लिए। अब उनमें से की तो ख्यानत एक ने थी, वो जिस शख्स ने चोरी की थी, तो सबका नाम इसमें क्यों आ गया, दूसरे की बात क्यों आ गई? तो इसलिए कि वो अपने उस शख्स के उस फेल पे राजी थे। किसी के गलत काम पे आप खुश हो जाते हैं या रिएक्शन शो नहीं करते تو گویا کہ آپ بھی اسی طرح کے ہو گئے. اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا ان کی خیانت خط سے بڑی ہوئی ہے. آگے بھی ان کے ارادے ہیں, ندامت اور توبہ اس شخص کے دل میں کوئی نہیں تھی. اس کی قوم صرف اس لیے اپنے آپ کو مطمئن سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمارے قبیلے کا شخص ہے, ہم اس کی بات کو نہیں لیں گے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی حالت بتاتے ہیں آیت 108 میں, یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. یہ لوگوں سے تو چھپتے ہیں مگر اللہ سے چھپ نہیں سکتے, کیونکہ لوگوں سے چھپنا چاہا تبھی تو اس کی زرہ کو چھپایا. اور کہتے ہیں کہ اس نے جو زرہ لی اس کو جا کے کسی جگہ آٹے میں رکھا, وہ آٹے کے نشان زمین پہ دکھے. اگر چاہیں گے تو میں اینڈ پہ سنا دیتی ہوں پورا واقعہ پڑھ کے حدیث سے. لیکن وہ آٹے کے نشانوں سے لوگوں نے چور کے گھر کو پا لیا تھا. ایک جگہ یہ بھی آتا ہے کہ جب اس نے زرہ نکالی تو اس میں آٹا لگا تھا, وہ جاتے جاتے وہ جدھر گیا. اور اس شخص نے زرہ چوری کی اور خود گھر اپنے لے جانے کی بجائے کسی یہودی کے پاس رکھوا دی کہ تم میری امانتن رکھ لو. جب امانتن وہاں رکھوانی چاہیے تو پھر کہا کہ بعد میں آ کے لے جاؤں گا. وہ جب کھوجی نکلے تو انہوں نے جب راستہ دیکھا تو آٹے کے نشان اس یہودی کے گھر تک تھے. تو مقدمہ پھر یہودی پہ پڑ گیا. یہودی سچا تھا, یہ جھوٹے تھے. یہ ساری خیانتیں یہاں جمع ہو گئی ہیں کہ کیسے کرے کوئی اور بھرے کوئی. کچھ لوگ بڑے شاطر ہوتے ہیں, چرب زبان, کبھی اپنی بات تو مانتا ہی نہیں ہے. میں نے نہیں کیا تھا, میاں نے کہا, بچوں نے کیا, ساس نہیں کرنے دیتی, میرے تو حالات نہیں ہیں, میرے تو ماحول نہیں ہے, میں تو یہ کر نہیں سکتی, یہ نہیں کر سکتی, وہ نہیں کر سکتی. بلکہ اپنا آپ بندے کو دیکھنا چاہیے. یستخفون من الناس, لوگوں سے آج ہم کتنا چھپتے ہیں. دیکھیے ہم سب کے لیے یہاں ایک کرائیٹیرین ہے, ہر وہ بات جو میں دوسروں میں ظاہر کرنا پسند نہیں کرتی اس کو اللہ کی نگاہوں میں پسند کرنا چاہوں گی. کل میرا کیا حال ہوگا اس وقت جب میدان محشر میں سب کے بیچ میں لوگوں کے سامنے وہ باتیں پیش کر دی جائیں گی جو کہ میں نے دنیا میں ان سے چھپائی تھی. کب ہوا ماں ہوں, وہ تو ان کے پاس ہوتا ہے. اس جب یتون ما لا یرد من القولی, جب راتوں کے وقت وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ ہوتی ہیں. ناپسندیدہ باتیں جو کرتے ہیں وہ اس وقت بھی جانتا ہے. وکان اللہ بما یعملون محیطا, اور اللہ تو ان کے سارے اعمال کو گھیرے ہوئے. اشارہ ہے ان کی رات کی وہ میٹنگز جو خاندان کے لوگوں نے بیٹھ کے کی کہ دیکھو اپنے قبیلے کا بندہ اس کی حمایت تمہیں کرنی پڑے گی. تو اللہ کو تو پتہ. ہم ذرا اپنی خفیہ باتیں دیکھیں جو خاندانی ٹاکس ہم دو لوگ بیٹھ کے کرتے ہیں کسی تیسرے ایشو پہ. میرا خیال ہے گھر میں جتنے ایشوز ہوتے ہیں نا رات کو اتنی خیانتیں ہوتی ہیں. یا بیوی شوہر کو سنا رہی ہوتی ہے مرچ مسالے لگا کے, یا ماں بیٹے کو سنا رہی ہوتی ہے, اور پھر سارے سکے سچے کے سچے فجر پہ سارے اٹھ کے نماز پھر پڑھ لیتے ہیں, عشاء کی جماعتیں بھی کراتے ہیں, تبلیغ بھی کرتے ہیں. لیکن جب انسانی معاملے آتے ہیں تو اتنے کٹر, اتنے بے حس کہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہم نے کس کا ساتھ دیا کس کا نہیں دیا. آپ اگر وہ دین سیکھ گئے نا جو اللہ کے نبی لے کے آئے تھے تو آپ دنیا میں سب سے زیادہ کول پرسنالٹی بن جائیں گے. پھر یہ گھبراہٹیں ختم ہو جاتی ہیں کہ اس نے کیا کیا, اس کی بات اس کو لگانی, میاں کو بتاؤں, اس کو بتاؤں, وہ بتاؤں, کیونکہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہی ہے خود کو اللہ کے سامنے پیش کرنا. قیامت کے دن وہ لوگ بڑے مطمئن بیٹھے ہوں گے جنہوں نے نہ کبھی کسی کی برائی کی نہ کسی کے بارے میں برا سوچا, اور جو بات تھی حقیقت کے مطابق جتنی بات تھی بس اتنی پیش کر دی. ہم کتنا بولتے ہیں, اور شادی سے پہلے تو کم ہی موقع ملتا ہے, اس میں بھی بتھیرا بول لیتے ہیں. لیکن آج کل کے جوان تو کیئر ہی نہیں کرتے نا ماں باپ کی بات کی. لیکن شادی کے بعد جو سلسلے غیبتوں کے, برائیوں کے, بدگمانیوں کے شروع ہو جاتے ہیں. کبھی آپ نے سوچا کہ اتنے میٹھے رشتے اتنے کڑوے کیسے ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ میٹھا رشتہ نہیں کیا بڑے چاؤ سے اپنے گھر میں ایک بہو لا رہی ہیں؟ جنہوں نے اپنے بیٹوں کی منگنیاں کی ان سے پوچھیں, وہ کہیں گے دنیا میں سب سے خوبصورت لڑکی وہ ہے, سب سے اچھی وہ ہے, سب سے اچھا خاندان اس کا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے جب وہ آپ کے گھر آ جاتی ہے؟ پھر آپ اس کی ماں کو بھی دیکھتے ہیں, اس نے کچھ نہیں سکھایا. یہ وجہ ہے کہ ہماری پھر سوچ بدل جاتی ہے. ہمیں یہ نہیں یاد رہتا کہ ہم کسی کے بارے میں جو غلط بولیں گے کل اللہ اس کو دیکھے گا. کبھی کوئی کسی پہ یہ ظلم کر سکتا ہے اگر اس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے؟ میری ایچ اینڈ ایوری موومنٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے. اس لیے کبھی مت بولیں آپ بڑی اچھی بات کرتی ہیں, آپ کے میاں آپ کی باتوں میں اتر گئے. زیادہ سے زیادہ آپ کے میاں کیا کریں گے؟ آپ کے بہاف پہ جا کے نیچے ماں سے لڑائیں گے نا. بیٹا الگ ہو گیا, ماں بہنوں کو چھوڑ گیا, کر دیجئے. اگر زیادتی کر کے کر رہے ہیں کبھی آپ اس کی بھی دل کی خوشی نہیں پائیں گے. زندگی کے اندر ہمیشہ دوسرے کو اپنی جگہ پہ لے آئیں. جس جگہ آپ کسی سے کوئی معاملہ کرنا چاہیں तो बस अपने आप को उस रिसीविंग एंड पे ले आए। अगर मैं इसकी जगह होती तो मैं क्या पसंद करती, बस बहुएं सारा दिन जान मारती रहे सास को, फिर भी खुशी कोई नहीं, क्योंकि एक बात ना कर दी, बहाने से हो गया, ये हो गया, वो हो गया। यानी मैं कहती हूँ कि सिर्फ अल्लाह ही हमारे हालात जानता है ना, तो आज हम बाइज्जत हैं। अगर बाज़ दफ़ा बाज़ माओ के हालात जो होते हैं कि बेटे के सामने बहू की बड़ी तारीफ़ें, तारीफ़ें तो नहीं करती लेकिन पूछती बहुत है, ये खा लो पी लो, और बाद में हो सकता है कि वो कहेंगे काम ही कर ले तो अच्छे है, और उसकी सही भी ना सुनी। और बाज़ बहुएं भी ऐसी होती हैं अकलमंद के वो मियाँ के सामने सास ससुराल से बहुत मीठी, और उनके बाद वो बदतमीज़ी भी होती है, जो मर्जी कर लें। ये तो आप एक मारूफ रिश्ता ना, मैं इसका नाम लेती हूँ, हर रिश्ते में ये कुछ होता है, जहाँ भी कोई दिल में खटपट होगी, बराबर के लोग हैं, देवरानी है, जेठानी, सगे भाई बहनों में होता है। लेकिन जब आपको मुझे ये यकीन है कि वकान अल्लाह बिमा यामलून मुहीता, तो हमारी जुबान नहीं बोलेगी। और अगर एक आज सबक सीख लेना यहाँ से कि नजा मन समत, मैंने बोलना ही कोई नहीं, अंधी हमायतें करते हैं और बाद में हम कहते हैं अच्छा वो ऐसी थी, वो मुझे तो पता ही नहीं। और इसका एक खूबसूरत तरीका ये है कि आप अपने आप को मसरूफ कर लें। मेरा ख्याल है पिछले ये 4-5 महीने से जब से आप कोर्स में, आपको ऐसे नहीं लग रहा होगा कि खानदान के काफी इशू कम हो गए हैं आपके, पाकिस्तान में सारा अमन और चैन हो गया। वजह क्या है, फोन ही कोई नहीं करते, और आता भी है फोन तो जल्दी जल्दी बात कर ली। और अगर आप यहाँ 4 घंटे ना आते तो यकीनन रोज 1 घंटे की तो कॉल थी, और जब से फ्री कॉलें शुरू हो गई, करना क्या उसमें। वो फुफ्फो की बेटी के साथ ये मसला, हाँ अच्छा ये है, फिर सारा दिन उसकी कॉल है, अच्छा फिर क्या, अब क्या, वो लड़की चली गई है, आ गए हो गए, अच्छा उसकी सास ऐसी बुरी, चलो उससे सिमटे तो अगले कोई हफ्ते में मामू की बेटी का मसला शुरू हो गया होगा। रात जाते के बैर, यकीन करें हम अपने आप को ज़ाया कर रहे हैं। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं, छोटे से इशू को हम बड़ा बना के ना, तो हम अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। बाज़ दफ़ा आप देखिए कि बाज़ारों के चक्कर, किस चीज़ पे बाजार का एक चक्कर लगता है कभी आपने सोचा? अब तो आपको पता नहीं मौका भी मिलता है कि नहीं, और मौका मिलने में मिल भी जाएगा, कुछ सारा दिन तो आप यहाँ रहते भी नहीं, लेकिन क्या दिन ब दिन इन चीज़ों की अहमियत आपकी ज़िंदगी से कम नहीं हो रही? हम जब फारिग होते हैं ना, तो हम अपनी एक एक चीज़, एक दुपट्टा, एक स्वेटर, एक चादर को इतनी अहमियत देते हैं, 4 दफ़ा उसको लेते हैं, 4 दफ़ा बदलते हैं, अपने एक दर्द को ऐसा पालते हैं कि उसके लिए एक 4-4 अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। और नहीं, ये सेल्फवर्शिप है। अगर हम अल्लाह की निगाहों से खुद को देखने लग जाएं, तो यकीन करें कि हमारे आधे क्या, मुझे तो लगता है सारे गम दूर हो जाए। हमने पाले हुए गम, जैसे लोग बिल्ली पालते हैं ना, आपके बच्चों ने बिल्लियाँ पाली होंगी, हम गम पालते हैं, दुख पालते हैं, ग्रजेस पालते हैं, कॉम्प्लेक्सेस पालते हैं। मेरे पास ये है ही नहीं, मेरी शक्ल नहीं अच्छी, मैं मोटी हूँ, मेरा नाक मोटा है, मेरा रंग काला है, तो आप और पालिए जाइए, आपका नसीब ही है, क्योंकि आप अल्लाह की बांट पर राजी कोई नहीं है। और जब ये सब कुछ पाला तो बिस्तर पर पड़ गए तो बीमार भी हो गए, साइकोलॉजिकली परेशान है। अल्लाह ताला बंदे को इतना ज़्यादा रिलैक्स देखना चाहता है, खुश देखना चाहता है, लेकिन हम अपने ऊपर बोझ डाल देते हैं। एक और बात भी नोट कीजिएगा कि अब इस शख्स का ये जुर्म खुल गया, पता चल गया ना, अल्लाह ताला की एक सुन्नत है, पहली दफ़ा जब कोई गुनाह करता है ना किसी भी किस्म का, चाहे लड़की का लड़के से बातें करना या दोस्ती करना या कोई और, पहले गुनाह को अल्लाह छुपा लेता है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दौर था, एक चोर चोरी काटने की सज़ा में उसका हाथ कटने लगा, उसकी माँ रोती हुई आ गई, कहने लगी ओ मेरे बेटे को माफ़ कर दो, इसने पहली दफ़ा चोरी की है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो ने फरमाया ये औरत झूठ बोल रही है, क्योंकि पहली गलती को बेशक अल्लाह ताला छुपा लेता है। यानी ये खुल गई है ना, तो ये पहली नहीं थी। और आप देखिए हमारे खान नहीं होता, खानदानों में मरूफ होते हैं कुछ लोग आदत से, कुछ की चर्ब जुबानी है, होशियारी है, चलाकी है, सबको पता होता है, क्योंकि वो बात आम हो गई है। कभी कभार तो हर जगह हो जाता है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, तो अल्लाह लोगों की जुबान पे वो बात ले आता है। और बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला गलतियां करने वाले को फिर मोहलत देता है, जाओ, और गुनाहगार उस ढील को अपने लिए मोहलत समझता है, जबकि अल्लाह सुबहान तआला उसको उससे बड़े काम पे पकड़ने लगता है। तो अल्लाह ताला से छुपना है, लोगों से इसलिए छुपते हैं ना कि बदनामी होगी, बुरे होंगे, उनके खौफ की वजह से, उनके ज़रर से बचने की वजह से, अपनी इज्जत बचाने की वजह से, ख़ानदान की साख बचाने की वजह से हम बचना चाहते हैं। बहुत दफ़ा बदला लेने का खौफ होता है कि ले नहीं सकेंगे, लेकिन अल्लाह से कैसे होंगे, वह हुआ मा हम, ये अल्लाह कैसा आपके और मेरे साथ है, क्या हमारे अंदर है, नऊज़ुबिल्ला, हलूल है, नहीं। लिखिए ये अल्लाह की माहियत कौन सी है, इल्म, समात और बसारत, ये 3 जुमले रट लें। अल्लाह बंदे के साथ है अलीम होने के नाते, असमी होने के नाते और अलबसीर होने के नाते। मतलब अल्लाह को इल्म है कि मेरे दिल में इस वक्त क्या है, चाहे मैं किसी गार में छुप जाऊंगी ना उसको पता है मेरे दिल में क्या है। मैं कुछ बोलती हूँ, अल्लाह अर्श पे है, सातवें आसमान पे है, उसको पता है मैंने क्या बोला, विस्पर क्या, दिल के इरादे भी देख लेता है। और बसारत, मैं कहीं सात पर्दों में छुप के कोई गुनाह करती हूँ तो अल्लाह ताला वहाँ से भी उसको देख लेता है। बस ये तीन मायतें साथ रख लीजिए, बाकी रह गई नेक लोगों के साथ अल्लाह का साथ, जैसे आता है कि इन्नल्लाह मअल मुत्तकीन, तकवा वालों के साथ, तो वो माहियत होती है मदद वाली। दोबारा थोड़ा सा दोहरा देती हूँ, शायद फ़ायदा हो आपको, कि अल्लाह ताला के बंदे के साथ होने की दो सूरतें हैं। एक है अमूमी सूरत, हर एक के लिए, काफिर मोमिन फासिक इंसान जानवर चरिंद परिंद मशरक मगरबी, यानी है ही वो सिफत अल्लाह की कि अल्लाह सब को देख रहा है, अल्लाह सब कुछ जानता है और अल्लाह सब सुनता है। ठीक है, हम ये जुमला कितना बोलते हैं कि अल्लाह सब सुनता है, कोई गलत बात कहते हुए खुद को कि अल्लाह ने ये भी सुन ली, अल्लाह सब देख रहा है तो अल्लाह ने ये भी देख लीजिए, जो मैंने गंदी चीज़ देखी ये अल्लाह ने भी देख ली, उसको भी पता था। ठीक है, ये है अल्लाह ताला की मैयत आमा, आम लोगों के साथ उसका सुलह। लेकिन एक है मैयत खासा, और वो क्या है, मदद के मानों में, कि तुम जहाँ भी जाओ मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे माँ अपनी बेटी को कहती है, बेटा गम ना करो, मैं पास तो नहीं हूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। परदेश में बैठी बच्चियों को माएँ तसलियाँ देती हैं ना, तो वो माँ का एक छोटा सा इशारा होता है, लेकिन जब कोई अच्छा काम करता है, नेक काम करता है, तो अल्लाह सुबहाना ताला फिर उसके साथ इस तरह से होता है। इस पे एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि एक इमाम है, इमाम ज़मख़्शरी, कहते हैं कि ये आयत लोगों को ख़बरदार करने के लिए काफ़ी है कि इनमें हया की कितनी कमी है। अपने रब से हया नहीं करते, बंदों से हया करते हैं, सच है कि नहीं? हम अल्लाह से कोई नहीं डरते, बंदों से बहुत डरते हैं। वो शख्स बेहया है जो गुनाह करते हुए अल्लाह से ना डरे। हदीस में आता है कि तन्हाई में भी बेलिबास होने से बचो, यानी नेकिड ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला ज़्यादा हक रखता है कि उससे हया की जाए। अब अल्लाह ताला उनकी बातों की तरफ इशारा करते हैं कि इस युबय्यितून मा ला यरदा मिनल कौल, क्या बातें करते थे, गीबत। यहाँ आप ये सारी बातें नोट कर लीजिए कि अल्लाह को कौन सी बातें नहीं पसंद थी जो उन्होंने की। नंबर एक, गीबत की। नंबर दो, झूठी कस्में खाई, यानी इन्होंने मुकदमे में जाके कसम भी खा ली कि हम कसम खाते हैं कि ये शख्स झूठा नहीं है, ये इसने चोरी नहीं की। फिर तीसरा इनका जुर्म था बोहतान, ब्लेमिंग, और चौथा था झूठी गवाही। और बड़े बड़े गुनाहों में से ये गुनाह आते हैं, कबायर में से ये चीज़ें आती हैं। इसके बाद अब आप देखिए कि आगे थोड़ा सा फिर इसको बढ़ाते हैं, अल्लाह ताला इस वाक्य के अंदर से सबक देते हैं। और आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जहाँ कोई वाक्य आता है कुरान में, स्टोरीज, कसस बोलते हैं इनको, उसके अंदर इबर बहुत है, इबरत की बातें बहुत हैं। हम भी तो ड्रामों और फिल्मों के नाम पर बहुत सारी स्टोरीज सुनते हैं और पढ़ते हैं ना, क्या इतने सबक उसमें से मिलते हैं जितने कुरान में से मिलते हैं? और अगर बच्चों को कहानियाँ सुनानी है तो उनको कुरान की कहानियाँ सुनाइए, इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा उनका जहन खुलेगा। फिर इसके बाद आप देखिए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत 109 में, हा अन तुम हा उलाई जा दल तुम अन हम फिल हयात दुनिया, हाँ तुम वो लोग हो जिन्होंने दुनिया की ज़िंदगी में इन मुजरिमों की तरफ से झगड़ा कर लिया, गलत साइड ले ली उनकी। फ़मई जो जा दिल्लाह अन हम यौमल क़ियामा, ये तो बताओ क़्यामत के दिन अल्लाह से इनके बारे में कौन झगड़ा करेगा? आज तो बड़ी साइड लेते हो ख़ानदान की, रिश्तेदारी की, रिश्ते नहीं करते बाहर क्योंकि अपने रिश्तेदारों में ही करने हैं और अपने ख़ानदान में करने हैं। कल क़्यामत के दिन जब अल्लाह ताला उनको गलत कामों पे पकड़ेगा तो कोई क़्यामत के दिन जाके उनका वकील बनेगा? कोई शाफे मक्षर बनना चाहेगा अपने किसी सूदखोर रिश्तेदार के लिए, बेनमाजी के लिए, जानी के लिए? नहीं। अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला, या कौन होगा जो वहाँ इनका वकील बन सके? उस मुनाफिक चोर के कबीले के लोगों से खिताब है। क्या आज दुनिया की तरफ से तो खूब वकालते करते हो, यहाँ तक कि नबी को कायल करने की हद तक पहुँच गए? चलो बिलफर्ज यहाँ उसको छुड़ा भी लेते, नबी को कायल भी कर लेते, तो क़्यामत के दिन इनको अल्लाह की पकड़ से कौन बचाता? इसलिए मत भूलो कि एक बहुत बड़ा दिन तुम्हारे सामने आने वाला है।